बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप किस हद तक मुतालिया करने के शौकीन हैं? हर रोज़ आप कितने घंटे मुतालिया करने में ख़ुद को मशगूल रखते हैं? आप जब मुतालिया करते हैं तो किस अंदाज से बैठते हैं या कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं मुतालिया करने के दौरान? ये सारी बातें बहुत अहम हैं। मसलन, आप लेट कर पढ़ते हैं या सीधे लेटकर, उल्टा लेटकर, कुर्सी पर बैठकर या चलते फिरते? जी हाँ, हम बात करेंगे मुतालिया करने और गर्दन दर्द का बाहमी ताल्लुक। नाज़रीन, गर्दन हमारी रीढ़ की हड्डी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इस हिस्से की सलामती, तंदुरुस्ती हमारे निचले धड़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मुतालिया करने के दौरान आप कोशिश करें कि गर्दन को 20 से 25 दर्जे ज़ाविये से ज़्यादा खम ना करें। अब हमें कैसे पता चले कि 20 से 25 दर्जे का जो ज़ाविया है वहाँ तक हमारी गर्दन खम हो चुकी है? इसका एक सादा सा तरीका है कि आप एक पेंसिल को दांतों के दरमियान रखें और वो पेंसिल इस अंदाज से होनी चाहिए कि वो ज़मीन के मुवाजी हो। उसके बाद बड़े आराम से आप गर्दन को 20 से 25 दर्जे ज़ाविये खम करें। पेंसिल से कम होने के उसके खम होने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप गर्दन को किस हद तक खम कर रहे हैं। मुतालिया करने के लिए बेहतर तरीका यही है कि आप एक मुनासिब कुर्सी और मेज़ का इस्तेमाल करें। अब कुर्सी किस तरह की होनी चाहिए, उसकी ऊंचाई किस हद तक होनी चाहिए, ये भी एक बहुत अहम इशू है। कुर्सी के लिए ज़रूरी है कि कुर्सी कोस्तार हो ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी में एक जो तबी जो इसमें खम है, एक कर्व है, वो बरकरार रहे। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास ऐसी कुर्सी दस्तयाब नहीं है तो आप एक छोटा सा तकिया अपनी कमर के पीछे रखें ताकि उस कोस को बरकरार रखा जाए। ज़्यादा कर जो मुतालिया करने वाले अफराद हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो गर्दन के मसाइल या मुतालिया करने लंबे अरसे के लिए मुतालिया करने के बाद वजूद में आने वाली मुश्किलात से आगा हूँ। उसके लिए उसे मुनासिब वर्जिशों से आगा होना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप करीबी फिजियोथेरेपिस्ट से रजू करें।